अक्षत फट से गाड़ी घुमाकर जैसे संध्या कहती है वैसे करके वहां से संध्या को ले जाता है और संध्या अक्षत को तेज गाड़ी चलाने को कहती है। संध्या कुछ तो बोलो, संध्या की सांसें अटकी ही होती है। अक्षत हम तुम्हें सब बताएंगे, फिलहाल एक बार यहां से निकलें। वैसे तुम्हें लेट कैसे हुआ, हम 4 बजे से तुम्हारा वेट कर रहे थे। मैं 3 बजे ही पहुंच गया था पर तुमने ही 4:30 बोला था। ओ हाँ अक्षत, बाकी सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो गया। मैंने 3:30 माँ को मंदिर भेजना था, उन्होंने थोड़ा सा लेट किया पर चले गए। मैं तुम्हें बता ना सकी कि तुम आ जाओ, तभी देव का फ़ोन आ गया, 4:30 आ रहा है। देव का 4:30 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं। फिर मैं तुम्हें बताऊँ कैसे ये बीच का टाइम कैसे निकला। आह भरते हुए, थैंक्स गॉड तुमने 4:30 से 5 मिनट पहले मुझे वहाँ से निकाल लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। रिलैक्स संध्या, पानी पियो। मैं तो कब का ले जाता, पर तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। और ये प्लान बताया तुमने, जो कहा मैंने किया, बस मुझे अब ये जानना है कि ये सब क्या है। अक्षत ने कहा, एक बार सेफ जगह ले चलो अक्षत, फिर तुम्हें सब बताएंगे, संध्या ने बोला और खुद चैन की सांस लेते अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्षत संध्या की ओर देखकर कहता है, क्या हालत हो गई है संध्या की। देव का घर, देव घर पहुंचते ही दौड़ते हुए अंदर जाता है। अंदर जाते ही संध्या की व्हीलचेयर पर देव की नज़र पड़ती है। संध्या कहते हुए देव दौड़ते हुए रूम में जाता है और संध्या संध्या चिल्लाता है। संध्या के फ़ोन को उठाकर बेड पर फेंकते हुए, संध्या कहाँ है, 20 फोन के बाद फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे कमरे में बोलते हुए देव पूरा घर छान मारता है, संध्या कहाँ है, संध्या संध्या चिल्लाता है। तभी और माँ और दीपा आ जाती है। देव संध्या कहाँ है। कौशल्या जी घर पर ही थी। देव नहीं है घर पर, मैंने पूरा घर छान मारा, उसकी व्हीलचेयर भी यहाँ है। दीपा तो भाभी कहाँ है। देव ये तो तुम दोनों बताओ, और मेरे आने से पहले तुम चले कैसे गए, मैंने साफ साफ बोला था ना मेरे आने के बाद जाना, मैं 4:30 बजे आने वाला था, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी जाने की। कौशल्या जी नहीं बेटा, तुम तो 3:30 बजे आने वाले थे। दीपा हाँ भाभी ने कहा आप आ रहे हैं, हम चले जाएं, तभी हम 3:30 के थोड़े बाद गए। क्या संध्या ने ऐसा कहा, और देव सोचता हुआ खुद से कहता है, मुझे 5 बजे बुलाया, इनको 3:30 जाने को कहा, मैंने 4:30 का कहा था और संध्या 4:30 पर गायब है। दीपा क्या सोच रहे हो भैया, क्या भाभी को कोई ले गया। देव संध्या ने कोई सरप्राइज प्लान किया था क्या। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। देव इधर उधर देखता है और अपने फोन में कैमरे की रिकॉर्डिंग बैक करके देखता है कि संध्या 4 बजे के बाद रूम में भी नहीं आई एक बार भी, और कौशल्या जी से पूछता है ये मंदिर की बात किसने की थी, और सब पूछता है चिल्लाते हुए। दीपाली डरी हुई सब बताती है कि भाभी ने कहा और आपको मना लेगी और बोला इस टाइम चले जाना, कहते सब बोल देती है। देव को ये सुनते ही 1 मिनट भी नहीं लगती समझने में कि ये संध्या ने जानबूझकर किया था, यहाँ से निकलने का प्लान बनाया था संध्या ने। और संध्या की व्हीलचेयर की ओर देखते हुए देव कहता है, संध्या ये तुमने सही नहीं किया है, मुझसे दूर जाने का फैसला तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरी संध्या को मुझसे दूर तो नहीं जाने दूंगा। कहते खुद से देव बाहर की ओर जाने लगता है। कौशल्या जी देव बेटा। देव दोनों की ओर घूरते हुए, आप दोनों को तो आकर देखता हूँ एक बार, मैं मेरी संध्या को ले आऊँ, कहकर देव चला जाता है। दीपा भाभी चले कहाँ गए। कौशल्या जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देव गाड़ी में बैठकर सोचते हुए कहता है, मुझे समझ आ गया है, पर संध्या किसके साथ गई होगी, या और कौन हो सकता है, एक ही तो है जो बिन कहे सब समझता है, तभी तो संध्या का साथ दिया। अक्षत अक्षत ये तुमने ठीक नहीं किया है। अक्षत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मेरी संध्या को मुझसे छीनने की कोशिश। अक्षत ये तो मैं नहीं होने दूंगा कभी भी नहीं, संध्या मेरी है और मेरी ही रहेगी। टाइम 5 बजे है, अब तक तो हाईवे पर भी नहीं पहुंचे होंगे। कहते देव फोन लगाता है, हेलो मैंने तुम्हें फोटो भेजी है, ध्यान से देखो, चप्पा चप्पा छान मारो हाईवे का, बस ये दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए, पैसे जितने मुंह मांगोगे, बस मुझे मेरी संध्या चाहिए। कहते अपने आदमियों को देव फोन करता है, आ रहा है संध्या तुम्हारे पास, तुम्हारा देव। कहते देव भी निकल जाता है। अक्षत संध्या को लेकर निकल जाता है और ये बात देव को समझने में ज्यादा देर भी नहीं लगती है, और देव अपने आदमी करके उन्हें ढूंढने को कहता है, क्योंकि देव उन्हें किसी भी हालत में दिल्ली नहीं पहुंचने देगा और उसे लगता है अभी हाईवे पर ही होंगे, सोचते खुद भी निकल जाता है। अक्षत दिल्ली की ओर हाईवे पर गाड़ी चला रहा होता है कि संध्या की ओर देखते फिर पूछता है, संध्या अब तो बताओ यार, मुझसे नहीं देखा जा रहा है ऐसे हालत, देखो अपनी इतना डर घबराहट, अब रिलैक्स करो, अब मैं साथ हूं ना तुम्हारे। हाँ तुम साथ हो पर अभी रिलैक्स नहीं हो सकती हूँ, वहां से निकल आई हूँ पर अभी भी पूरी तरह निकलना बाकी है। संध्या बोलती ही है कि संध्या की आंख छलक जाती है कि अक्षत अपनी गाड़ी रोकता है और संध्या रोते हुए अक्षत के गले लग जाती है। अक्षत संध्या को गले लगाते हुए कहता है, संध्या एक बार तो बताती, इतना दर्द सहा, बताया तुमने कुछ नहीं। संध्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, पर देख कर लग रहा है पल पल मेरी दोस्त ने कितना कुछ सहा है, और संध्या के आंसू पहुंचती हैं। कैसे बताते अक्षत, हम पल पल मरे हैं, तुम तो फिर भी हमसे दूर थे और घर वालों से भी हम कुछ न कह पाए, और देव ने हमसे सबको दूर कर दिया, सबको दूर, और दादी को, रोते हुए इतना दूर कि वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। अक्षत क्या कहते संध्या की ओर देखता है। संध्या हाँ अक्षत, देव ने दादी का मारा है, उन्हें देव ने ही गिराया था, कहते हुए संध्या अब तक जो हुआ वो सब बता देती है। अक्षित, पर देव ने ये सब किया क्यों? वो तो प्यार। हाँ, प्यार, उसी प्यार के लिए, संध्या के लिए, मेरे लिए, ताकि मुझ पर सिर्फ उसका हक हो। कहने को वो मेरी दुनिया नहीं, सबसे नाता तोड़ बस मैं उसकी रहूं, और कोई ना हो, ना परिवार, ना तुम। वो जब चाहे मेरे साथ जो करे, उसकी कैरिंग में सेल्फिशनेस आ गई। अक्षित, अब उसे मंजूर नहीं मेरा उसे छोड़ना, इसलिए वो हर हद पार करता है। हर हद, कहते हुए संध्या फिर सब बता देती है। अब सिर्फ मुझे देव से नफरत है, प्यार से नफरत है। संध्या की हालत जो हुआ सुनकर अक्षित को बहुत गुस्सा आता है। मुझे नहीं पता था देव ये सब करेगा, प्यार का मतलब ऐसा तो नहीं होता। छी, मैं अब उस देव दीक्षित को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जिसने संध्या के वजूद को ही रौंदना चाहा, और दादी को, अक्षित बोलता है। सोचा तो मैंने भी नहीं था अक्षित, पर खोने का डर देव को लगता है मैं छोड़ ना दूं तो वो ये सब करता है, और मुझे मेरे अपनों के खोने का डर, जिससे चलते मैंने देव को सहा है। बस अब बहुत हो गया अक्षित, प्लीज अब मुझे देव के पास नहीं जाना, उस पिंजरे में कैद नहीं होना जहाँ वो गिद्ध की तरह मुझे नोचता हो। नहीं, रोते हुए, बस बस अब ऐसा नहीं होगा, देव पास भी नहीं आएगा तुम्हारे, अब तक तुमने अकेले सहा है, हमें नहीं पता था, अब देव की नहीं चलेगी, तुम कोई चीज नहीं हो जो वो अपनी मर्जी से यूज कर सके, सबके साथ विश्वासघात किया है देव ने, इसकी सजा देव को जरूर मिलेगी, अक्षित संध्या को संभालते हुए कहता है। अपनी दोस्त की ऐसी हालत पर अक्षित भी रो पड़ता है और अपनी आंखें पहुंचता खुद से कहता है, देव दीक्षित, तुम खुद को समझते क्या हो, संध्या के साथ किए हर जुर्म की सजा मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तभी संध्या अपने आंसू पहुंचते हुए, यहाँ से चलो अक्षित, हमें जल्द घर जाना है, शाम हो गई है, अब तक तो देव को पता भी लग गया होगा, हम दिल्ली ही जा रहे हैं, रात से पहले घर पहुंच जाएंगे, कहता हुआ अक्षित अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। क्रमशः